लावण्या अभी भी किचन में अरुणिमा के सामने खड़ी थी और गुस्से में उसे घूर रही थी, जब अरुणिमा ने उसकी तुलना एक बाजारू औरत से कर दी। लावण्या गुस्से में कुछ कहना चाहती थी। उसने उंगली दिखाकर अरुणिमा से कहा, बहुत अकड़ है ना तुम्हें, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। आस्तिक के सामने तो ये जुबान नहीं चलती, उसके सामने तो भीगी बिल्ली बनकर रहती हो। अरुणिमा ने उसकी बकवास सुनी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया। वो उसे देखते हुए बोली, हाँ, मैं आस्तिक के सामने ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि मुझे उसके सामने बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आस्तिक मेरी बातें बिना कहे ही समझ जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या, आस्तिक ने तो खुद तुम्हें सामने से बुलाया है, फिर भी तुम अपनी अदाओं से उसे इम्प्रेस नहीं कर पा रही हो। उसे हर वक्त मेरी ही जरूरत होती है, यहाँ तक कि वो मुझे ही अपने पास चाहता है। और तुम उसके पास इतने छोटे और रिवीलिंग कपड़े पहनकर जाती हो, फिर भी उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। लावण्या मैडम, कॉलेज के दिन खत्म हो गए हैं और उसी के साथ तुम्हारा वो अट्रैक्शन भी खत्म हो गया है। आज की सच्चाई ये है कि मैं आस्तिक की बीवी हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो। लावण्या का चेहरा गुस्से से भर गया था, लेकिन अरुणिमा को खुद अपने शब्दों पर हैरानी हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद को आस्तिक की बीवी के रूप में स्वीकार करेगी। उसे ये नाम खुद से अलग करना था। वो हमेशा हमेशा के लिए रायचंद नाम से खुद को अलग करना चाहती थी, आस्तिक के अस्तित्व से खुद को दूर करना चाहती थी। पर आज उसने खुद ही सामने से अपने रिश्ते की पहचान करवाई थी। अरुणिमा के लिए तो सबसे खुशी का दिन वो होने वाला था जब आस्तिक उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता। अब अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो क्या मैं लंच बना सकती हूँ? वो क्या है ना, आस्तिक का कॉल आया था कि वो थोड़ी देर में घर आ जाएंगे और दोपहर का लंच घर पर ही करेंगे, तो मुझे उनके आने से पहले लंच बनाकर तैयार करना है। तुम चाहो तो अपने लिए खुद कुछ बना सकती हो। अरुणिमा वापस अपने काम पर लग गई। उसे सच में आस्तिक के लिए लंच बनाना था और वो उसकी तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ लावण्या उसे गुस्से से देख रही थी। वो तेज कदमों से चलते हुए बास्केट के पास गई और उसमें से अंडे निकालकर ट्रे में रखने लगी। फिर गैस स्टोव के पास आकर ऑमलेट और सैंडविच बनाने लगी। अरुणिमा ने अभी अभी पनीर काटा था और पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही लावण्या ने अंडा फोड़ा, उसकी महक पूरे किचन में फैल गई। उस अंडे की महक से अरुणिमा का दिल इतनी तेज मचलने लगा कि उसे मितली आने लगी। वो कसकर मुंह पर हाथ रखते हुए उल्टी रोकने की कोशिश करने लगी। लावण्या ने उसे ये करते हुए देखा तो मुंह बनाते हुए बोली, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, रोस्टेड चिकन तो ऐसे खा रही थी जैसे तुम्हारा फेवरेट हो, और अब अंडे से तुम्हें स्मेल आ रही है। अरुणिमा ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे सच में इस समय बहुत मितली आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उल्टी कर देगी। लावण्या उसकी अजीबोगरीब एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगी। वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, सच में तुम्हें अंडे की स्मेल से इतनी प्रॉब्लम हो रही है? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? लावण्या ने ये बात मजाक में कही थी और कहने के बाद जोर जोर से हंसने भी लगी, जैसे वो अरुणिमा पर हंस रही हो। लेकिन अरुणिमा की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। वो गुस्से और हैरानी से लावण्या की तरफ देखने लगी। उसने जल्दी जल्दी अपने ख्यालों में गिनती की, आखिर आस्तिक और उसके बीच ओवुलेशन पीरियड में कितनी बार इंटरकोर्स हुआ है। और फिर अरुणिमा ये सोचकर पूरी तरह से दंग रह गई कि उसके लास्ट मंथली साइकिल से लेकर अब तक एक भी रात ऐसी नहीं थी जब आस्तिक ने उसे चैन से सोने दिया हो। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आस्तिक ने साफ कह दिया था कि उसे सेफ्टी इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट देखकर लावण्या की हंसी रुक गई और वो हैरानी से अरुणिमा को देखते हुए बोली, कहीं तुम सच में तो प्रेग्नेंट नहीं हो? अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, आस्तिक तुम्हें जान से मार देगा। वो तुम्हारी बॉडी के लिए ऑब्सेस्ड है, और अगर तुमने अपनी बॉडी को खराब किया तो वो तुम्हें ही बर्बाद कर देगा। अरुणिमा गुस्से में लावण्या की तरफ देखते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और ये जो मुझे मितली आ रही है वो इस वजह से क्योंकि तुमने अंडे में बहुत ज्यादा प्याज डाला है, और मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अंडे की बदबू और भी ज्यादा अजीब लग रही है। तुम्हारे पास जितना दिमाग है उतना ही इस्तेमाल करो लावण्या, तुम्हारा यहाँ सिर्फ एक ही काम है, आस्तिक को अट्रैक्ट करना ताकि तुम जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सको। इसीलिए मेरे बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। मीम, घर की दूसरी मेड किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। लावण्या और अरुणिमा एक साथ उसकी तरफ देखने लगी। वो मेड अरुणिमा की ओर देखते हुए बोली, मीम सर घर आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो फ्रेश होकर लंच करेंगे। अरुणिमा ने अपने हाथों की तरफ देखा, उसे पनीर की सब्जी बनानी थी। उसने जल्दी से मेड की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है तुम एक काम करो, जब तक मैं लंच लेकर आती हूँ तब तक आस्तिक को एक ब्लैक कॉफी दे दो, इतनी देर में मैं लंच तैयार कर दूंगी। मेड जल्दी से ब्लैक कॉफी लेकर आस्तिक के पास चली गई और उधर अरुणिमा तेजी से लंच बनाने में लग गई। उसने सबसे पहले एग्जॉस्ट फैन ऑन किया, क्योंकि अंडे की महक से वो सच में वहां खड़ी नहीं रह पा रही थी। किसी तरह जल्दी जल्दी उसने लंच तैयार किया। तब तक आस्तिक भी अपनी कॉफी खत्म करके डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। अरुणिमा जल्दी से आस्तिक के पास लंच परोसने लगी, लेकिन लावण्या का तो अब तक ब्रेकफास्ट ही बन रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि महारानी सोकर अभी अभी उठी थी। उसकी लंच के टाइम पर ब्रेकफास्ट और डिनर के टाइम पर लंच हो रहा होता था। अरुणिमा ने अब तक किस्मी के साथ मिलकर यूट्यूब वीडियो देखकर कई तरह की नई डिशेस बनाना सीख लिया था। उसकी कुकिंग स्किल्स में काफी सुधार आ चुका था। आस्तिक ने जब पनीर खाया तो उसके मुंह में स्वाद भर गया और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अरुणिमा पास में ही खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी बेचैनी थी। किचन में जो अंडे की महक मिली थी उसकी वजह से उसका मन अभी भी अजीब सा हो रहा था। आस्तिक ने अचानक अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अरुणिमा संभल नहीं पाई और सीधे उसके गोद में जा गिरी। आस्तिक ने उसकी कमर पकड़कर उसे कसकर अपने करीब कर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, काफी अच्छा खाना बनाने लगी हो तुम, इतनी टेस्टी डिश के लिए इनाम तो बनता है ना। अरुणिमा घबराई हुई नजरों से आस्तिक की तरफ देखने लगी। आस्तिक ने अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पास ले जाकर उसे अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसके होठों पर किस कर दिया। अरुणिमा घबरा गई, लेकिन उसे पता था कि इस किस के बदले वो आस्तिक से कुछ भी कह नहीं सकती। उसे चुपचाप ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। अब तो ये उसके लिए रोज की बात हो गई थी। आस्तिक उसे कहीं भी किस करने लगता था और कमरे में तो पूछो ही मत, वहां तो बड़ी मुश्किल से वो अपने कपड़े पहन पाती थी, वरना आस्तिक के रहते उसके लिए कपड़े पहने रहना भी मुश्किल हो जाता था। आस्तिक उसे किस करने में मसरूफ था और अब अरुणिमा को भी समझ आ चुका था कि उसे आस्तिक के किस का कैसे जवाब देना है। तभी अचानक उसे फिर से वही अजीब सी महक अपने आसपास महसूस हुई। उसने झट से आस्तिक के कंधों पर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती खुद से दूर किया। आस्तिक को ये पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में अरुणिमा को घूर कर देखा। अरुणिमा जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरे कपड़ों में आटा लगा हुआ है। आस्तिक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, बाकी चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और शिद्दत से उसे किस करने लगा।
अरुणिमा का पूरा शरीर सहर उठा, लेकिन तभी उसकी नज़र किचन के दरवाजे पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लावण्या अपने हाथों में ब्रेकफास्ट की प्लेट लिए खड़ी थी और गुस्से में अरुणिमा को देख रही थी। उसके हाथों की पकड़ प्लेट पर कसती जा रही थी, जैसे किसी भी पल वो प्लेट टेबल पर पटक देगी। आस्तिक इन सबसे बेखबर अरुणिमा के गालों को शिद्दत से चूमे जा रहा था। अरुणिमा के पूरे शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी। लावण्या गुस्से में तेज कदमों से डाइनिंग टेबल पर आई और अपनी प्लेट जोर से टेबल पर पटक दी, जिससे आस्तिक एकदम चौंक गया। वो लावण्या को देखने लगा, जो अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, यू गाइस कैरी ऑन। लेकिन अरुणिमा को अंडे की महक फिर से आने लगी और उसका दिल बहुत भारी हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उल्टी कर देगी। वो जल्दी से आस्तिक की गोद से उठ गई। आस्तिक ने उसे ऐसे उठते और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लावण्या ने भी अरुणिमा को देखते हुए कहा, हाँ आस्तिक, मुझे लगता है अरुणिमा ठीक नहीं है। ये किचन में भी ऐसे ही कर रही थी, जैसे इसकी तबीयत खराब है। देखो इसका चेहरा कितना पीला पड़ गया है। आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी खोजी निगाहों से देखा। अरुणिमा ने जल्दी से गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी, शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है। आस्तिक ने सख्त लहजे में कहा, अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर से चेक करवाओ और ज़रूरत हो तो मेडिसिन भी लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। ये बॉडी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, इसलिए मेरे लिए इसे सही सलामत रखना। लेकिन अरुणिमा अब वहाँ खड़ी नहीं रह पा रही थी। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखा और घबराहट में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं मेडिसिन ले लूँगी, और इतना कहकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे के बाथरूम में पहुँचते ही उसका अंदेशा सही निकला। उसे उल्टियाँ होने लगीं। उसने जो कुछ भी खाया था, ऑरेंज जूस और फ्रूट, सब बाहर आ गया। पर ऐसा कैसे हुआ? उसे अजीब सी महक क्यों आ रही थी? अचानक से उसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? वो यही सोच रही थी कि तभी उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। कहीं जो मैंने सोचा है वो सच तो नहीं? अरुणिमा बहुत ज्यादा डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो घबराते हुए आईने में खुद को देखने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। उसे बहुत ज्यादा डर और घबराहट हो रही थी, लेकिन असली परेशानी ये थी कि वो खुद भी इस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने जल्दी से अपने मंथली साइकिल के दिन गिनने शुरू किए और जो शक था वो और भी पक्का हो गया। लेकिन अभी वो इस शक पर मुहर नहीं लगा सकती थी जब तक कि उसे खुद यकीन ना हो जाए। लेकिन वो ऐसा करेगी कैसे? प्रेगनेंसी किट। अरुणिमा ने सोच लिया कि वो प्रेगनेंसी किट लेकर चेक करेगी कि कहीं वो सच में प्रेग्नेंट तो नहीं। लेकिन आस्तिक के रहते अगर वो प्रेगनेंसी किट मंगवाती है या फिर कार्ड से पेमेंट करती है तो आस्तिक को तुरंत पता चल जाएगा कि उसने क्या खरीदा। उसे कोई और तरीका अपनाना होगा जिससे वो किट भी ले आए और आस्तिक को भनक तक ना लगे। आस्तिक किसी जरूरी काम से घर से निकल चुका था और लावण्या अपने कमरे में बैठकर कोई अडल्ट फिल्म देख रही थी ताकि आस्तिक को इम्प्रेस कर सके। अरुणिमा बाहर लॉन में आई, जहां ड्राइवर गाड़ी के पास खड़ा था। उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ग्रॉसरी का कुछ सामान लाना है। ड्राइवर जल्दी से बोला, ठीक है मैडम, मैं आपको मार्केट ले चलता हूँ, लेकिन मुझे सर को बताना होगा। अरुणिमा तुरंत बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आस्तिक को पहले से ही पता है, मैंने उससे परमिशन ले ली है और हम बस पास की ही ग्रॉसरी मार्केट जा रहे हैं। क्योंकि अरुणिमा आस्तिक की बीवी थी, इसलिए ड्राइवर ने ज़्यादा सवाल नहीं किया और उसे पास के ग्रॉसरी मार्केट में ले गया। अरुणिमा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने जल्दी जल्दी घर का कुछ सामान उठाया और फिर विमेन सेक्शन में चली गई, जहां से उसने एक प्रेगनेंसी किट जल्दी से उठाई और उसे बाकी सामानों के बीच छुपा दिया। जब वो बिलिंग काउंटर पर पहुंची तो उसने सारा सामान एक साथ रखा, लेकिन प्रेगनेंसी किट को अलग कर दिया। कैशियर ने जब पेमेंट किया तो अरुणिमा ने आस्तिक का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड आगे बढ़ा दिया, लेकिन कैशियर ने किट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम, इसकी पेमेंट नहीं हुई है। अरुणिमा तुरंत बोली, आप बाकी सामान का पेमेंट कर लीजिए, इसके पैसे मैं कैश में दूंगी। शुक्र था कि प्रेगनेंसी किट बहुत महंगी नहीं थी, क्योंकि अरुणिमा के पास खर्च करने के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड थे और वो कैश बहुत कम रखती थी। लेकिन जितना कैश उसके पास था उतने में प्रेगनेंसी किट आ गई। सारा सामान लेकर वो गाड़ी में बैठी और घर की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वो ग्रॉसरी का बैग लेकर घर में दाखिल हुई, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। लावण्या सोफे पर बैठी थी और उसके ठीक सामने एक डॉक्टर बैठा हुआ था। लावण्या ने अरुणिमा को देखते हुए कहा, अरे अरुणिमा, तुम आ गई। देखो, आस्तिक ने तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर को भेजा है। डॉक्टर को अपने सामने देखकर अरुणिमा की तो हालत खराब हो गई। उसने बैग को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसी के अंदर प्रेगनेंसी किट थी। जब तक उसे खुद यकीन नहीं हो जाता कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, तब तक वो डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा सकती थी। डॉक्टर तो एक मिनट में उसकी प्रेगनेंसी का पता लगा लेते। अरुणिमा जल्दी से बोली, मुझे इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि डॉक्टर को घर बुलाने की जरूरत पड़ जाए। लावण्या ने बेफिक्री से कंधे उचकाकर कहा, खैर, ये सब तुम अपने हस्बैंड से पूछो कि उन्होंने इतनी जल्दी में डॉक्टर को घर क्यों भेज दिया। अब जब ये आ ही गए हैं तो इन्हें अपना काम करने दो। अरुणिमा ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर, आप 10 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी बाहर से आई हूँ, पहले फ्रेश होकर आती हूँ। डॉक्टर, जो एक महिला थी, मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाने लगी, लेकिन अरुणिमा इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि वो तेज़ कदमों से अंदर जाने लगी और तभी उसका पैर कारपेट में फंस गया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और ज़मीन पर गिर गई। उसके हाथ का बैग छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसमें रखा सारा सामान, इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी किट, ज़मीन पर बिखर गया।